ये इंद्रियों का दासत्व, इंद्रियों की दासता, उर्दू भाषा में कहें अपनी करुण दासता है, दासता दास्ता, थोड़ा फर्क है उच्चारण में। दास्ता माने अपनी करुण कहानी है, अनादिकाल से अपन दास बने रहे हैं, अब स्वामी की शरण में आए हैं। स्वामी, स्वामी किसको कहते हैं? स्व विद्यते यस्य सह स्वामी। जो अपना मालिक है वो स्वामी, जिसको स्व प्राप्त हुआ है वो स्वामी, जो स्वाधीन है वो स्वामी, जो इंद्रियों का दास नहीं है वो स्वामी, और जो कषायों के वशीभूत नहीं है वो स्वामी। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, स्वामी का अर्थ साधु है। साउथ में तो सबको स्वामी बोलते हैं, रामस्वामी, रंगास्वामी, वो ठीक है, एक पद्धति है। क्या होता है कि कुछ चीजें कहीं कहीं किन्हीं प्रांतों में रूढ़ होती है, लेकिन स्वामी का यथार्थ अर्थ व्याकरण के अनुसार, भाषा शास्त्र के अनुसार क्या है? जिसका मन अपने वश में है वो स्वामी। जब कोई मेहमान आता आपके यहां तो आप आइए स्वामी भोजन कर लीजिए ऐसा नहीं कहते, लेकिन जब गुरु आते हैं तो हे स्वामिन अत्र अत्र ऐसा बोलते हैं। कितना फर्क है, अंतर समझ में आ रहा है? तो बस जिस दिन अपन इस दास्ता को छोड़ देंगे तो अपनी आगे की दास्ता बदल जाएंगी, अपने आगे की कहानी, अपने आगे का पूरा क्रम बदल जाएगा। और वो बदलना है, अभी अपने पास समय है। ये मत सोचना भविष्य के भरोसे जो पड़ा रहता है वो अपने भविष्य पर कुठाराघात करता है। कोई भरोसा नहीं भविष्य का, एक दिन का भरोसा नहीं, कल रविवार किसका आता है किसका नहीं आता है किसी को नहीं पता। पता है किसी को? अगर कोई कहे पता है तो भगवान की साक्षी में एक बार बोल दे जोर से कि मुझे पता है। किसी में ताकत नहीं है, आयु किसी के वश में नहीं होती, वो तो पिछले जन्म में जो अकाउंट आपने किया है वहां पर डिपॉजिट, वो है अपने खाते में, और बीच में वो बैंक रॉबरी भी हो सकती है। कदली घात मरण, अकाल मरण बोलते हैं उसको, बीच में एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो आयु का खजाना लुट जाए। जो क्रमिक श्वासों के माध्यम से एक समय में एक निषेक के क्रम से आयु निकल रही है, उतने समय में पूर्ण नहीं हो पाएगी, बीच में अगर कहीं लीकेज हो गया या फिर वो टैंक फट जाए तो फिर सब निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कुछ लोग निकाल भी देते हैं, जो सोचते हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वो मूर्ख, बुरा नहीं मानना, वो मूर्ख, वो नादान लोग ये नहीं सोच पाते कि जिस पाप से पीड़ित होकर मैं अपना अंत करने चला हूं, उस पाप का जब तक अंत नहीं होगा तब तक जन्म जन्म में मैं जिस कारण ये काम कर रहा हूं उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने वाली। समझ में आएगी? और सरल बोले, जो आत्महत्या करने वाला है वो क्या सोचता है? वो किसी चीज को सहन नहीं कर पा रहा है तभी तो कर रहा है आत्महत्या, और कोई कारण है? कोई असहनीय बात उसको खटक रही है, यही कारण है ना, एकमात्र कारण। वो सोचता है कि मर जाऊंगा तो फिर ये चीज मुझे नहीं सहनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन वो ये विचार नहीं करता कि उस दुख का इलाज मौत नहीं है, क्योंकि मौत एक नया वातावरण तो दे सकती है लेकिन पुण्य का फल देने की ताकत मौत में नहीं है। मर गए यहां से लेकिन पाप कमा कर गए तो क्या परिणाम निकलेगा? अभी जितना दुख हो रहा था उससे अधिक दुख अगले भव में होगा, क्योंकि अभी जितना था उतना था पाप, लेकिन अब ये नया और जोड़ लिया ना, तो इस जुड़े हुए पाप का फल क्या होगा? उससे कम हो सकता है क्या पहले से? या अधिक होगा? निश्चित ही अधिक होगा। इसलिए आत्महत्या किसी कष्ट का उपचार नहीं है। कष्ट से बचना, देखो एक नंदी शेण नाम का ब्राह्मण था, वो इतना परेशान हो गया जीवन से, अब इच्छाएं ज्यादा हो और पुण्य कम हो तो परेशान होना निश्चित है। अधिक इच्छा और भाग्य कमजोर, दुख तो निश्चित होगा। उसकी क्या इच्छा थी? उसकी इच्छा थी कि मैं 7 कन्याओं से विवाह करूं। 7 कन्याओं से विवाह करना चाहता था। तो फिर किसी ने बोला कि उनसे पूछ के तो देख तू जिनसे विवाह करना चाहता है। तो उनसे पूछा तो फिर उनने उसका भयंकर तिरस्कार कर दिया। अब तिरस्कृत होकर वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, लेकिन उस पहाड़ के नीचे तलहटी में जो वो पहाड़ पर चढ़ करके ऐसे छलांग मारना चाहता था, धूप पड़ रही थी तो परछाई नीचे तलहटी तक के जा रही थी। अब नीचे 3 मुनिराज बैठे थे, उनमें से एक तो गुरु थे, 2 शिष्य थे, और शिष्य में से एक का नाम शंख मुनि और दूसरे मुनि का नाम निर्नामक था। तो फिर गुरु ने बोला कि मैंने आपको चरणानुयोग कर्णानुयोग सारे ग्रंथ पढ़ाए, निमित्त शास्त्र का भी अध्ययन कराया, बताओ ये परछाई किसकी है? तब वो शिष्य बोलते हैं कि गुरुवर इतना सूक्ष्म ज्ञान तो आपके ही पास है, आप बताइए किसकी परछाई है। हमें तो इतना लग रहा है कि कोई निराश मनुष्य की परछाई है। तब फिर गुरु बोलते हैं कि ये तुम्हारे आगामी भव यानी आगामी मनुष्य पर्याय के पिता की परछाई है। बोले वो बड़ा अद्भुत ज्ञान रहता था उस समय मुनियों में, वो परछाई देख करके बता रहे हैं कि ये तुम्हारे अगले मनुष्य जन्म में जो पिता बनने वाले हैं उनकी परछाई है। बोले तो फिर उन्होंने शिष्यों ने पूछा कि ये क्यों इस प्रकार ऐसे निराश होकर जीवन से हताश होकर ऐसी चेष्टा क्यों कर रहे हैं? बोले कि नहीं, तुम जाओ ऊपर संबोधन दो उसको, वो सन्मार्ग को अंगीकार करेंगे, जाओ। तो दोनों मुनिराज पहाड़ पर ऊपर जाते हैं और फिर उसको रोकते हैं। वो बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा इच्छाओं का दास था कि सोचता था कि मरूंगा और मर नहीं पाया, हड्डी टूट गई और फिर कुछ हो गया तो क्या। ये सब दुनिया भर के उसके विचार, वहां भी उसकी चंचलता थी। उसको रोका इन्होंने, बोले कि क्यों मरना चाहता है? बोले तो वो नंदीशेन कहता है कि मुझे कोई नहीं चाहता। बोले तो मरेगा तो चाहेंगे क्या कोई? बोले कि वो मेरे को नहीं मालूम। तो फिर बोले कि मूर्ख, मरने से तेरा काम नहीं हुआ, तू पाप के उदय से दुखी है, उन पापों को नष्ट करने के लिए तपस्या क्यों नहीं करता? तप से ही तुझे सुख मिल सकता है। तब वो बोलता है कि अच्छा मुझे मिल सकता है? तो वो इनके साथ आ जाता, बोले कि चल हमारे गुरुजी नीचे विराजमान हैं, उनके पास चल। उनके पास जाता है तो फिर पूछता है कि कैसे तप किया जाता है। तब गुरु महाराज बताते हैं पूरी विधि, 5 महाव्रत, 5 समितियां, 6 आवश्यक, 5 इंद्रियों को वश में रखना और 7 शेष गुण, केश, लोच, नग्नता आदि, पूरी मुनिचर्या बता देते हैं। फिर पूछते हैं कि बोल क्या विचार है, ऊपर से कूदना है या फिर ये काम करना है? तो फिर बोलते हैं कि ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूँ। दीक्षा होती है उनकी, तो शुरू में तो द्रव्यलिंगी रहते हैं, मतलब सिर्फ उसकी किसी कामना से दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन बाद में सत्संगति का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसको लगता है कि मैं एक बिल्कुल व्यर्थ का मनुष्य था, लेकिन आज इन गुरुओं की संगति से लोग मेरी पूजा करते हैं और नवधा भक्ति से आहार देते हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि जिनकी कृपा से मुझे इतना अच्छा आहार मिलने लगा है और मेरी लोग पूजा करने लगे हैं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं और कुछ तो जानता नहीं, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, पर मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। वो सेवा करने लगा मुनियों की, और सेवा करते 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 उसको धीरे धीरे तत्वार्थ श्रद्धान हो गया, और फिर उसके अंदर तीन लोक में दुर्लभ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन अमूल्य रत्न प्रकट हो गए। रत्नत्र प्रकट होने पर वो आत्महत्या करने वाला ब्राह्मण एक भावलिंगी 3.9 करोड़ मुनिराजों में मुनि हो गया। अब मुनि होने के बाद जो सेवा का भाव उसने छोड़ा नहीं, उस अवस्था में सेवा करते रहे, सेवा करते रहे, सेवा करते करते उनको रिद्धियां प्राप्त हो गई, बड़ी बड़ी रिद्धियां, औषध रिद्धियां। किसी भी साधु को कोई भी बीमारी हो, अगर नंदीशेर मुनि उनकी सेवा कर ले तो फिर वो बीमार रह नहीं सकते, ऐसे रिद्धियां प्रकट हो गई उनमें। देवताओं की सभा में एक बार चर्चा हो गई कि इस समय संसार में श्रेष्ठ मुनि कौन है, बोले तो फिर उनका नाम आ गया, नंदीशेन मुनि। तो एक देव आश्चर्य में पड़ गया कि अच्छा नंदीशेन, अरे वो तो आत्महत्या कर रहा था, बोले वो आज इतने महान मुनि। बोले कि जिसको देखना है जाकर देख भी सकता है, इंद्र बोलता है। तो वो देव आता है परीक्षा लेने इनकी, और ऐसी परीक्षा लेता है कि उस परीक्षा में अच्छे खासे लोग भी विचलित हो जाए, और वो एक रुग्ण साधु का रूप बना करके वहां आता है। नंदीशेन मुनि उनसे पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, तब वो बताते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ है। फिर बोलते हैं कि आपको कौन सी चीजें भोजन में अनुकूल पड़ती हैं, तो वो बोलते हैं कि दक्षिण भारत की फलानी चीज मुझे अनुकूल पड़ती है, पश्चिम भारत की अमुक वस्तु मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल होती है, और पूर्व भारत की तरफ से कुछ ऐसी सामग्री है वो मुझे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल, उत्तर भारत की भी कुछ चीज़ें मेरे लिए अनुकूल पड़ती है, अगर ऐसा भोजन मिलता है तो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है वरना बिगड़ जाता है। अब इन्होंने क्या किया, नंदीशेन मुनि ने सिर्फ ऐसे मन आँख बंद करके भावना की कि आज इनके भोजन में सारी अनुकूल सामग्री उपलब्ध हो, और उस दिन जब वो आहार के लिए गए चौके में तो वो सारी चीज़ें वहाँ चौके में प्रकट हो गई उनकी रिद्धि के प्रभाव से। तो वो सब आहार लेकर के आए, लेकिन रात में उसको उनको लगा कि अब और परीक्षा लेना चाहिए इनकी, वो चीज़ तो इनने कर दी, मतलब मेरी व्यवस्था तो हो गई इनकी भावना से, इतना तो लगा कि इनके पास मतलब सेवा भाव तो बड़ा अद्भुत होगा, ताकि इनकी भावना मात्र से मुझे चौके में वो सारी चीज़ें मिली। तो रात में उन्होंने ऐसे कराहना प्रारंभ कर दिया, नंदीशेन मुनि बिल्कुल सतर्क थे, वो एकदम उनकी सेवा में पहुँच गया। बोले तकलीफ ज़्यादा हो रही है महाराज, बोले कि हाँ तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, और मेरे शरीर से कुछ मवाद जैसा निकल रहा है, बोले पीप जैसा। तो नंदीशेन मुनि बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप जो भी तकलीफ हो बताते जाइए, मैं आपकी पूरी सेवा करूँगा। और उसने देव ने विक्रिया से ऐसे ऐसे रस शरीर से निकाले कि अगर कोई सामान्य मनुष्य हो तो उसको मूर्छा आ जाए, इतने भयानक परीक्षा ली उसने। लेकिन नंदीशेन मुनि ने उनकी ऐसी सेवा की है, अपने हाथ से वो पूरा मवाद दूर करते गए, कमंडल के पानी से शुद्ध करते गए, फिर उनकी सेवा करते गए। इस प्रकार करते करते जब काफ़ी समय बीत गया, तब देव पानी पानी हो गया। देव को ऐसा लगा कि मैं ये कौन सा पाप कमा रहा हूँ यहाँ आकर के, जिन मुनि के चरणों में मुझे नमस्कार करना चाहिए और जिनकी सेवा मुझे करनी चाहिए, उन मुनि से मैं असंयमी देव अपनी सेवा करा रहा हूँ, मेरी दुर्बुद्धि को धिक्कार हो। बहुत पछताता वो देव, और फिर अपना असली रूप प्रकट करके उनके चरणों में नमस्कार करके उनकी पूजा वंदना करके वापस लौट जाता है। बोले धन्य है मुनिवर आप, मैंने तो इंद्र के मुख से आपकी प्रशंसा सुनी, इसलिए मैं यहाँ परीक्षा लेने आ गया, मुझे क्षमा करना, मैं पात्र नहीं हूँ कि आपकी परीक्षा ले सकूँ, परीक्षा गुरु लिया करते हैं, शिष्य या भक्त परीक्षा लेने वाले नहीं देने वाले होते हैं। और जो शिष्य या भक्त समझता अपने आप को और गुरु की परीक्षा लेता है, उससे बड़ा घोर मिथ्या दृष्टि संसार में और कौन हो सकता है। गुरु की परीक्षा, अभी सुधा सागर महाराज जी कह रहे थे कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो आचार्य जी के ग्रास गिनते हैं, ये भोजन में कितनी रोटियां लेते हैं, कितने ग्रास लेते हैं, धिक्कार है। बोले महाराज श्री का ये कहना था कि अगले जन्म में ये लोग एक एक कौर के लिए तड़पेंगे। बोले जो गुरु के भोजन का ग्रास गिन रहे हैं, गुरु इतना मिट्टी भर भोजन लेकर के आपको समुद्र परोस के जाते हैं अमृत का, इसका तो विचार करो। गुरु क्या लेते हैं ये देख रहे हो आप, क्या देते हैं ये देखो। तो वो इतना पछताता है वो देव, वो सोचता है कि मैं अपने ये पाप कैसे धोऊंगा, वापस चला जाता है वो स्वर्ग। और यहाँ नंदीक्षीण मुनि बहुत तपस्या करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, और इतनी विनय थी उनमें कि वो इतने रिद्धिधारी होकर के भी कभी भी छोटे से छोटे साधु की भी सेवा करने में पीछे नहीं हटते थे। उनके बाद के दीक्षित साधु, जैसे भी साधु हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा करते थे वो। आजकल तो लोगों ने नमोस्तु और नमोस्तु करना या नहीं करना, यहाँ तक धर्म को सीमित कर दिया। अरे अगर आप नमोस्तु करना छोड़ देंगे, आप तो ज्ञानी जीव है ना, तो फिर वो साधु आपके द्वारा अज्ञानियों के भरोसे छोड़ दिया गया, स्थितिकरण कौन करेगा, ज्ञानी करेगा या अज्ञानी। तो अगर आपने नमोस्तु करना छोड़कर और उनको अज्ञानियों के भरोसे उनके पास ही जाना छोड़ दिया, तो वो सुधरेंगे कैसे अज्ञानियों की संगति में। तो साधु को बिगाड़ने का जिम्मा किसका, ज्ञानियों का कि अज्ञानियों का। उन ज्ञानियों का जिन्होंने साधु को अज्ञानियों के जिम्मेदारी में सौंप दिया। अब अज्ञानी लोग क्या देंगे उनको, कोई ऐसी चीज दे देंगे जो साधु को देने योग्य नहीं है। ये लो महाराज चेक। उन्होंने कभी आगम में चेक नहीं किया कि चेक साधु को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। तो ये सारी विसंगतियां क्यों आती है कि लोगों ने नमोस्तु और नमोस्तु करना या नहीं करना, यहां तक धर्म को सीमित बना दिया। और अपने आप को बहुत बड़ा वो चल समझ रहे हैं कि देखो हम तो सोच समझ कर काम करते हैं, विवेकी होना चाहिए श्रावक को, बड़े विवेकी बन गए वो। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कितना बड़ा अविवेक उनके ही द्वारा हो रहा है कि उन्होंने त्रुटि करने वाले साधु को सुधारने के बजाय असंयमी और अज्ञानी जीवों के भरोसे छोड़ दिया। अब साधु के अस्थितिकरण का दोष किसके माथे, सोचने की बात है ना। तो इतना बारीकी से सोचते नहीं लोग, लोग यही समझते हैं कि चलो अपन थोड़ा सा सीनियर हो गए बाकी लोगों से, बाकी सब अपने पीछे रह गए। नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है स्थितिकरण। एक जीव का स्थितिकरण करने के लिए कभी कभी 15-20 साल लग जाते हैं। एक मुनि थे, एक घटना हम सुना दें आपको। वो मुनि हम लोगों को मिले थे, बहुत पुरानी बात है, उस समय माताजी लोगों की पहली दीक्षा हुई थी, नैनागिरी की बात है। और उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वो प्रतिष्ठा विधि में कहाँ त्रुटि हो रही है वो निकालते थे और बोलते थे कि यहाँ ठीक करो, ये विधि नहीं, ऐसा नहीं चलेगी, बोले ये करो वो करो, इन्हीं कामों में लगे रहते थे वो। तो फिर उस समय तो समझ में नहीं आता था, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ऐसा लगता था कि मुनियों को तो अपने ध्यान ज्ञान और तप में लीन रहना चाहिए, ये सब इन सब कामों में कहाँ लगे हैं महाराज। सभी को ऐसा ही लगता था, जो भी देखता था तो उनको लगता था कि ये महाराज कहाँ वहीं खड़े रहते हैं। बोले देखो, फिर आगे चल करके उनकी बुद्धि थोड़ी सी विक्षिप्त जैसी होने लगी, तो किसी भी मंदिर में चले जाते थे, जय बजरंग बली, जय श्री राम, मतलब उनको ये भी ख्याल नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं, कुछ भी चलता था उनका, न प्रतिक्रमण न सामायिक कुछ नहीं। लेकिन अवस्था बहुत ढल चुकी थी, समय निकट था। तब एक व्यक्ति ने मन में विचार किया कि इन्होंने जीवन भर 24 घंटे में एक बार आहार लिया है, हमेशा पैदल गमन किया है, गर्मी सर्दी की अनेक बाधाओं को सहन किया है और कई बार भूख प्यास की तीव्र वेदनाओं को भी झेला है और सदैव केश लोंच किया है, अपने हाथों से बालों को उखाड़ कर अलग किया है। यानी इन्होंने मुनि व्रतों में से ये जो कठिनाइयां हैं इनसे कभी मुख नहीं मोड़ा है, लेकिन इनका मन अभी मुनि की साधना में स्थिर नहीं है, मन इनका इधर उधर भटक रहा है। यदि इनका मन ठीक हो जाए तो फिर जितना मेहनत मुझे वहां तक पहुंचने के लिए करनी पड़ेगी उससे आधी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इनको और ये बहुत ऊपर उठ सकते हैं। उसने मन में ठान लिया कि मैं इनकी सेवा करूंगा, चाहे मुझे नमोस्तु करना पड़े, चाहे मेरी जानकारी में ये जो है सो है, स्पष्ट है मेरी जानकारी में, तो भी मैं नमोस्तु करूंगा, लेकिन इनका स्थितिकरण मुझे करना है, मैं सेवा करूंगा। ये चीज उसने ठान ली। बहुत टेढ़ी खीर है स्थितिकरण। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा कि सम्यक दृष्टि को दूसरा सम्यक दृष्टि स्थितिकरण से भी पहचान लेता है कि इसके अंदर स्थितिकरण के भाव कितने हैं और आलोचना के भाव कितने हैं। कभी नहीं, आलोचना सपने में भी नहीं होना चाहिए किसी साधु की, कितना भी आपकी दृष्टि में निकृष्टतम भी क्यों ना हो, लेकिन नहीं, अपने अंदर ये भावना होनी चाहिए कि आत्मा का ऐसा स्वरूप नहीं है, ये किसी कर्म के उदय से ऐसा विकारी भाव हो रहा है, इसका वो उदय समाप्त हो जाए, ये भावना करना चाहिए। उस जीव से कभी आपने नफरत की तो फिर आप आत्मज्ञान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि फिर आपने आत्मज्ञान को छोड़ दिया, उसके आत्मस्वरूप आप बिल्कुल उसको आपने ध्यान में नहीं लिया, उसका कर्मोदय समाप्त हो ऐसी भावना करना चाहिए। तब उसने सेवा करना प्रारंभ किया। पहले तो वो एकदम ऐसे देखते थे गुस्से में, कौन है बोले, ऐसे हाथ जोड़ लेते थे विनम्र मुद्रा, महाराज सेवा करना चाहता हूं, तो फिर कभी करा लेते थे कभी नहीं भी कराते थे, कभी डांट भी देते थे। तो ऐसा करते करते चतुर्दशी का दिन आया, तो चतुर्दशी के दिन सोनागिर की बात है, उन्होंने उनके हाथ में किताब दी कि महाराज आज बड़ा प्रतिक्रमण है, तो वो किताब दी महाराज के हाथ में, महाराज ने किताब ली, बोले मेरे को सिखा था प्रतिक्रमण, ऐसे किताब फेंक दी। अब किताब फेंकने के बाद उसने उठा ली, उसको लगा कि इसका दोष मुझे तो लगा है लेकिन फिर भी मुझे सेवा करना है, और किताब फेंकने के बाद वो मुनि महाराज जब ऐसे बैठे अकेले तो थोड़ी देर बाद उनकी आंखें भर आई और उन्होंने उस व्यक्ति को बुलवाया और बोले कि आज मेरे से कुछ गलती हो गई ऐसा लग रहा है मुझे, तुमने मेरे हाथ में जिनवाणी दी थी क्या, मैंने जिनवाणी फेंक दी। एकदम रोने लग जाते हैं वो, तो फिर उसने कहा कि महाराज जी हो गई गलती, कोई बात नहीं, आपको करना है प्रतिक्रमण करना है महाराज, या मैं सुना देता हूँ महाराज। तो बोले कि हाँ तुम सुना दो। बोले उनने सुनाया जैसा तैसा जो भी बंदा था उससे सुना दिया। तो फिर वो प्रतिक्रमण सुन करके उनको, फिर देखो कब पलट सकता है मनुष्य, कुछ भरोसा नहीं ना, इसलिए अपन एकदम ही किसी की एक बिगड़ी हुई छवि अपने दिमाग में भर कर ना रखें। जीव और पुद्गल दोनों में परिवर्तन होता रहता है, बदलने का प्रयास करो, वो कोई बिगड़ा हुआ दिख रहा है तो आप बदलने की कोशिश करो, स्थायी छवि किसी की नहीं बनाना चाहिए। अगर आप किसी की गलत छवि बना लेंगे तो आप कभी उसके प्रति वात्सल्य भाव नहीं रख सकते। ये बहुत बड़ी परीक्षा है ज्ञानी की। वत्सल्यम विनयेनय, कुंदकुंद स्वामी ने 8 चिन्ह बताए कि सम्यक दृष्टि कैसे पहचानता है किसी को। तो उसमें वात्सल्य सबसे पहले नंबर पर वात्सल्य रखा कि नहीं, अगर गलती भी हो जाए किसी धार्मिक मनुष्य से तो वो घृणा का पात्र नहीं है, नफरत का पात्र नहीं है, गलती हुई है उसकी, एक पर्याय है वो गलती, द्रव्य नहीं है वो, उसका अभाव हो जाए तो फिर इसी द्रव्य में सिद्ध अवस्था भी प्रकट होगी, होना ही है, तो क्यों नफरत करना किसी द्रव्य से। तब फिर उन्होंने जब प्रतिक्रमण सुनाया तो महाराज एकदम भाव विभोर हो गया, और भावों में उनका लगभग स्थितिकरण हो सा गया, क्योंकि प्रतिक्रमण को वो समझते थे और वो शब्द सुन करके उनको सब ख्याल में आ गया कि देखो मुनि के लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, और मुझसे कौन सी गलतियां हुई है। फिर उनको ये भी ख्याल आया कि मेरा समय बहुत कम है, तब उससे कहा कि भाई तुम मेरी संलेखना करा सकते हो, मेरी भावना है कि अंत में मेरी संलेखना हो जाए। तब वो कहता है कि महाराज देखो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ जो और संघ हैं उनसे मैं बात करता हूँ। तो फिर और संघों के पास गए तो संघ में भी जो लोग साधु लोग थे वो सब घबराते थे उनसे कि भाई उनसे दूर रहो अच्छा है। बोले कि भाई अपने बस का काम नहीं है संलेखना करना, कई महाराजों ने ऐसा जवाब दिया। लेकिन अंत में फिर इनने बहुत आग्रह किया कि नहीं महाराज अब उनमें कुछ परिवर्तन दिख रहा है मेरे को, तो संलेखना हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर उनने बोला कि ठीक है उनको आने दो यहाँ पर, फिर वो जैसा निवेदन करेंगे उनके भावना वगैरह देख करके हम निर्णय करेंगे। तब फिर इनने कहा जाकर के महाराज जी वो जो बड़े आचार्य लोग हैं और महाराज लोग हैं वो आपसे स्वयं बात करना चाहते हैं, मैंने तो उनसे निवेदन कर दिया। तो बोले चलो चलो मेरे को ले चलो वहाँ। वो ले जाते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ चर्चाएं होती उनकी, तो फिर उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं वो लोग, तो जब प्रश्न के अच्छे जवाब देते हो तब लगता है कि अब इनका मन एकदम ठीक है, और फिर संलेखना की विधि प्रारंभ होती है। लगभग 24 से 48 घंटे तक वो विधि चली और उसके बाद अत्यंत शांत परिणामों के साथ उनका समाधि मरण हो गया। अब बताइए कितनी अद्भुत घटना है, जो दो दिन पहले पागल जैसा लग रहा था उसमें इतना परिवर्तन कि समाधि मरण हो जाए, और जो जीवन भर होश में रहने वाले लोग हैं कई बार उनका समाधि मरण नहीं हो पाता, संलेखना बिगड़ जाती है, मरते समय कई प्रकार की इच्छाएं हो जाती है। उनको बुलाओ बोले फलाने को अब तो मेरा समय पूरा होने जा रहा है, संलेखना हंसी खेल नहीं है वो, तो जिसका हृदय सरल होता है उसी का मरण निराकुलता पूर्वक होता है, अभिमानी और छलिया व्यक्ति का मरण शांति से कैसे हो सकता है। अभी भी यहां एक घटना हुई थी कुछ दिनों पहले, एक मुनिवर आए थे, उनको कुछ तकलीफ थी और उनका बर्ताव कुछ अव्यवस्थित था। कल हमारे पास पत्र आया, हम एकदम भाव विभोर हो गए उस पत्र को पढ़कर। उन्होंने उस पत्र में लिखा कर्म के उदय से ऐसी मेरी स्थिति थी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे समाज से ब्रह्मचारियों से और जिनके भी साथ या जिनको भी मेरे व्यवहार से पीड़ा पहुँची है मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। ये पत्र उन्होंने भेजा और ये पत्र का संदेश हम आपको सुना रहे हैं और इसका जवाब आपको वहाँ जा कर के देना चाहिए, यही आपकी सभ्यता कहलाएगी और यही धर्म का एक हिस्सा है या सम्यक दर्शन का एक स्वरूप है समझ लो आप, कि जो सच्चा श्रद्धालु है वो इन नम्रताओं से कभी दूर नहीं हट सकता। यानी एक साधु आपसे क्षमा मांगे और आप उनके चरणों में जाकर के नमस्कार न करो तो आप तो फिर एक अलग श्रेणी के मानव गिने जाएंगे। जरूर उनके चरणों में आपको भी अपनी विनय प्रकट करनी चाहिए और कहना चाहिए कि महाराज जो भी था कर्म के उदय से हो गया, वो क्षणिक पर्याय थी, लेकिन अब आप अपनी साधना में, हमें तो सबसे पहले तो इतनी खुशी हुई कि महाराज जी ठीक हो गए, बहुत खुशी हुई, उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, बहुत खुशी हुई। तो फिर ये चीज़ अगर सामूहिक रूप में जाकर या फिर पृथक पृथक जाकर के भी आप कहें उनसे, और जिनसे उनकी चर्चाएं हुई है वो भी अगर जाकर के उनसे मिलते हैं तो कितना अच्छा हो, क्योंकि धर्म जो है इन्हीं बातों में है। ऐसा नहीं कि किताबों में आपका धर्म पढ़ा हुआ हो, कहीं नहीं किताबों में, न धर्म हो धार्मिक ही बिना, जो धार्मिक है उसी के पास धर्म होता है, किताबों में नहीं होता धर्म। तो क्या करोगे। एक घटना और हुई थी बहुत